नमस्कार, यह आकाशवाणी है। सबसे पहले आकाशवाणी ईटानगर के सभी श्रोताओं को नववर्ष 2026 की हार्दिक शुभकामनाएं। अभी आप मनोज कुमार शर्मा से समाचार सुनेंगे। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का सभी से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सीखने का आग्रह। कहा, स्किल द नेशन चैलेंज अभियान भविष्य के लिए कार्यबल तैयार करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की पहली वंदे भारत स्लीपर रेलगाड़ी को जल्द ही रवाना करेंगे। यह रेलगाड़ी कोलकाता और गुवाहाटी के बीच चलेगी। केंद्र सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित किया। लोगों से सुझाव मांगे। भारतीय रिजर्व बैंक ने कहा, देश की अर्थव्यवस्था लगातार सुदृढ़ होती जा रही है और गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के 9 वर्ष पूरे हुए। अब समाचार विस्तार से। दुनिया भर में नववर्ष 2026 धूमधाम से मनाया जा रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने इस अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। राष्ट्रपति ने अपने संदेश में कहा है कि नववर्ष नई ऊर्जा और सकारात्मक बदलाव का प्रतीक है। उपराष्ट्रपति ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की है कि यह वर्ष सभी के लिए शांति, स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि लेकर आएगा। प्रधानमंत्री ने आशा व्यक्त की है कि नववर्ष सभी के लिए अच्छा स्वास्थ्य और समृद्धि लेकर आए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक के साथ देश में सकारात्मक बदलाव लाने का एक अवसर है। वे राष्ट्रपति भवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक कौशल विकास SOAR के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम को संबोधित कर रही थी। राष्ट्रपति ने कहा है कि विभिन्न क्षेत्रों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्व तेजी से बढ़ रहा है और अब हर किसी के लिए इसकी तकनीक को सीखना अनिवार्य हो गया है।
भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की SOAR यानी स्केलिंग फॉर AI रेडीनेस की पहल प्रशंसा का योग्य है। इस पहल के अंतर्गत प्री AI मॉड्यूल्स तैयार किए गए हैं। इस मॉड्यूल्स के द्वारा AI से जुड़े विषयों और मशीन लर्निंग के बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में भी जानकारी मिलती है। इस मिशन का उद्देश्य AI के बारे में जागरूकता बढ़ाना, आर्थिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना तथा एक टेक ड्रिवन देश के निर्माण में योगदान देना।
राष्ट्रपति ने तकनीक के माध्यम से भारत के एक जिम्मेदार भविष्य को आकार देने का आह्वान भी किया।
सरकार विभिन्न संस्थाओं, इंडस्ट्री पार्टनर्स तथा एकेडेमिया के साथ मिलकर यह सुनिश्चित कर रही है कि भारत केवल टेक्नोलॉजी को अपनाए ही नहीं बल्कि उसके माध्यम से रेस्पॉन्सिबल फ्यूचर को भी आकार दे। हम सब मिलकर विकसित भारत बनाने के लिए प्रतिबद्धता के साथ कार्य करें। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप भारत को नॉलेज सुपर पावर बनाने तथा टेक ड्राइविंग समावेशी और समृद्ध भारत के निर्माण के लिए हम सब अपना योगदान दें।
कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति ने विद्यार्थियों और सांसदों को AI प्रमाण पत्र प्रदान किए और स्किल द नेशन चैलेंज नामक राष्ट्रीय जागरूकता अभियान का शुभारंभ किया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहे कि देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जल्द ही गुवाहाटी और कोलकाता के बीच चलेगी। उन्होंने कहा है कि रेलवे ने स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का अंतिम हाई स्पीड परीक्षण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी आगामी कुछ ही दिनों में इस रूट पर पहली वंदे भारत स्लीपर को इनॉग्रेट करेंगे, फ्लैग ऑफ करेंगे। ये रेलवे के लिए और देश के लिए और हमारे यात्रियों के लिए एक बहुत ही बड़ा माइलस्टोन है।
श्री वैष्णव ने बताया है कि 16 कोच वाली ये स्लीपर ट्रेन 1000 से 1500 किलोमीटर तक की लंबी दूरी की यात्रा के लिए शुरू की जा रही है। उन्होंने बताया है कि यह ट्रेन आरामदायक स्लीपर सीट, स्वचालित दरवाजे और आधुनिक शौचालय सहित आधुनिक सुविधाओं से लैस है। केंद्र सरकार ने 4 नई श्रम संहिताओं के लिए मसौदा नियमों को अधिसूचित कर दिया है। इनमें मजदूरी संहिता 2019, औद्योगिक संबंध संहिता 2020, सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020 और व्यवसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य पारिस्थितिकी संहिता 2020 शामिल है। इन संहिताओं में गिग वर्कर सहित अन्य श्रमिक मजदूर रोजगार के प्रकार, ग्रेच्युटी बोनस और सामाजिक सुरक्षा को परिभाषित किया गया है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इन मसौदा नियमों पर 45 दिन के अंदर सभी हितधारक अपनी आपत्ति और सुझाव दर्ज कर सकते हैं।
श्रम मंत्रालय ने देश में दशकों से चल रहे मौजूदा श्रम कानूनों को सरल और सुव्यवस्थित करने के लिए पिछले वर्ष 21 नवंबर को इन चार नई श्रम संहिताओं के कार्यान्वयन की घोषणा की थी। मंत्रालय के अनुसार नई श्रम संहिताएं देश के कार्यबल के लिए बेहतर मजदूरी, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा और कल्याण सुनिश्चित करेंगी। श्रम संहिता सभी श्रमिकों के लिए समय पर न्यूनतम मजदूरी, युवाओं के लिए नियुक्ति पत्र, महिलाओं के लिए समान वेतन और सम्मान, 40 करोड़ श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा और एक वर्ष के रोजगार के बाद निश्चित अवधि के कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी की गारंटी देती है। ये सुधार 40 वर्ष से अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच, ओवरटाइम के लिए दोगुना वेतन और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार श्रमिकों के लिए सामाजिक न्याय की गारंटी भी सुनिश्चित करते हैं। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से।
सरकार ने कहा है कि ऑटोमोबाइल के लिए उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना में अब तक 35,657 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। भारी औद्योगिक मंत्रालय ने कहा है कि इस योजना के अंतर्गत कुल 10 लाख से अधिक इलेक्ट्रिक दोपहिया और 2,38,000 से अधिक इलेक्ट्रिक तिपहिया वाहनों को प्रोत्साहन दिया गया है। लगभग 80,000 इलेक्ट्रिक चार पहिया वाहनों और लगभग 1,400 इलेक्ट्रिक बसों को भी मंजूरी दी गई है। एकीकृत भुगतान प्रणाली यूपीआई ने दिसंबर में 29% की वृद्धि के साथ 21,63 करोड़ लेन देन किए हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम के आंकड़ों के अनुसार ये लेन देन वार्षिक 20% बढ़कर लगभग 28 लाख करोड़ रुपए हो गए हैं। पिछले वर्ष नवंबर में 87,421 करोड़ रुपए था। औसत दैनिक लेन देन की संख्या अब बढ़कर 69 करोड़ 80 लाख हो गई है। तेल विपणन कंपनियों ने महानगरों में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों के मूल्य में 111 रुपए की वृद्धि की है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड के अनुसार दिल्ली में व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडरों की खुदरा कीमत अब 1,691 रुपए और 50 पैसे हो गई है। घरेलू एलपीजी सिलेंडर के मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारतीय अर्थव्यवस्था लगातार मजबूत गति से बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि ये बात भारतीय रिजर्व बैंक ने अपने नवीनतम वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में कही है।
मजबूत घरेलू मांग, मध्यम मुद्रास्फीति और विवेकपूर्ण व्यापक आर्थिक नीतियों के समर्थन से ये संभव हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार मजबूत बैलेंस शीट, अनुकूल वित्तीय परिस्थितियों और वित्तीय बाजारों में कम अस्थिरता के कारण घरेलू वित्तीय प्रणाली लचीली बनी हुई है। इसमें भू राजनीतिक घटनाक्रम और व्यापार संबंधी चुनौतियों सहित बाहरी अनिश्चितताओं के कारण निकट भविष्य में जोखिमों की चेतावनी भी दी गई है। रिपोर्ट के अनुसार राजकोषीय समर्थन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में मजबूत निवेश के कारण वैश्विक अर्थव्यवस्था ने लचीलापन दिखाया है। इसमें बढ़ती अनिश्चितता, बढ़ते सार्वजनिक ऋण स्तर और वैश्विक वित्तीय बाजारों में अव्यवस्थित सुधार की संभावना से उत्पन्न होने वाले जोखिमों के बारे में भी चेतावनी दी गई है। समाचार कक्ष से।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सोशल मीडिया पर वीडियो संदेश साझा करते हुए लोगों से कहा है कि सभी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं, उन्नति करें और राष्ट्र के विकास में सक्रिय योगदान दें। गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सरकार की एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के आज 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि योजना 1 जनवरी 2017 को गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को उनके स्वास्थ्य और पोषण में सुधार के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी।
प्रधानमंत्री मातृवंदना योजना केंद्र सरकार की एक प्रमुख योजना है। इसका उद्देश्य समाज के आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को मातृत्व के दौरान आर्थिक मदद देना है। इस योजना के तहत गर्भवती महिलाओं और स्तनपान कराने वाली माताओं को नगद सहायता दी जाती है। पहले बच्चे के लिए 5,000 रूपये दिए जाते हैं, वहीं दूसरे बच्चे के रूप में यदि लड़की का जन्म होता है तो 6,000 रूपये की सहायता मिलती है। योजना की राशि 2 किस्तों में दी जाती है। पहली किस्त 3,000 रूपये गर्भावस्था के दौरान पंजीकरण पर मिलती है। दूसरी किस्त 2,000 रूपये बच्चे के जन्म के बाद दी जाती है। इसके अलावा पात्र महिलाओं को जननी सुरक्षा योजना के तहत भी प्रोत्साहन राशि मिलती है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के अनुसार अब तक इस योजना में करीब 4,50,00,000 महिलाएं पंजीकृत हो चुकी हैं और 19,000 करोड़ रूपये से अधिक की राशि लाभार्थियों को वितरित की जा चुकी है। यह योजना गर्भावस्था के दौरान पोषण, स्वास्थ्य जांच और मां के साथ साथ बच्चे के अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने में मदद कर रही है।
इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।